23 अप्रैल दिन भर दिन सोमवार, मैं हूं रेहान फदल। उपराष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग नोटिस को किया नामंजूर, कांग्रेस ने बताया गैर कानूनी।
अपने आप में ये फैसला गैर कानूनी है, गलत है, इलीगल है, और मैं समझता हूँ कि ऐसा फैसला चेयरमैन साहब को नहीं।
कांग्रेस ने दिल्ली में की संविधान बचाओ अभियान की शुरुआत।
अत्याचार बढ़ता जा रहा है, ऊना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जहाँ भी आप देखो दलितों के खिलाफ अत्याचार बढ़ता जा रहा है, कुचले जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं।
होंगे आपके पत्रों के उत्तर भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार आदर्श राठौर से। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ विपक्ष के महाभियोग नोटिस को उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने खारिज कर दिया है। वहीं कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि वेंकैया नायडू का इस नोटिस को खारिज करने का फैसला गैर कानूनी है। ईरान ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख ताकतों के साथ हुए उसके परमाणु समझौते में बदलाव किए जाने की कोई संभावना नहीं है। ईरान के विदेश मंत्री जवाद जरीफ ने एक ट्वीट में कहा कि हस्ताक्षर करने वाले यूरोपीय देशों को ट्रंप को इस बात के लिए मनाना चाहिए कि समझौते को बरकरार रखा जाए। ट्रंप ने यूरोपीय देशों को इस बात के लिए सहमत होने के लिए मई तक की समय सीमा दी है कि समझौते की शर्तें और कड़ी की जाएं। मगर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि वो अपने चीनी समकक्ष के साथ इस बात पर सहमत हैं कि समझौते को कमजोर करने की किसी भी कोशिश का विरोध किया जाएगा। हमारा और चीन का एक ही रुख है। वैश्विक सुरक्षा बनाए रखने के लिए जिम्मेदार सबसे बड़े अंग संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इस दस्तावेज को मान्यता दी है और इस तरह के समझौते पर पुनर्विचार संभव नहीं है। ऐसा करने का मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में हाल ही में हासिल की गई सबसे बड़ी उपलब्धि के साथ छेड़छाड़ की जाए। हम और चीन इस तरह की किसी भी कोशिश का विरोध करेंगे। ये थे रूस के विदेश मंत्री के शब्द। मेडागास्कर की राजधानी में एक बार फिर प्रदर्शनों का दौर शुरू हो गया है। दो दिन पहले इसी तरह के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई में दो लोगों की मौत हो गई थी। आज ये प्रदर्शनकारी मृतकों के शवों के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन में पूर्व राष्ट्रपति और विपक्षी राजनेता मार्क रावलोमनाना के समर्थक हिस्सा ले रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनके नेता को इस साल होने वाले चुनावों में हिस्सा लेने से रोका जा रहा है। वहीं मौजूदा राष्ट्रपति रजाओ नरीमंपिया नीना ने इन प्रदर्शनों को तख्तापलट की कोशिश बताया है। 2015 में पेरिस में हुए इस्लामिस्ट हमलों के एकमात्र जिंदा बचे संदिग्ध सलाह अब्देसलाम को बेल्जियम में दो साल पहले हुए शूटआउट के दौरान हत्या की कोशिश का दोषी पाया गया है। 2016 में अब्देसलाम को गिरफ्तार करने की कोशिश के दौरान गोलीबारी में तीन पुलिसकर्मी जख्मी हो गए थे। उस समय यूरोप का मोस्ट वांटेड रहा यह शख्स ब्रसेल्स के बाहरी इलाके में छिपा हुआ था। अब्देसलाम के एक वकील स्वेन मैरी ने अदालत के फैसले के बाद पत्रकारों से कहा, मैं इस फैसले की किसी भी बात से सहमत नहीं हूं, मगर मैं अपने क्लाइंट के साथ सावधानी से इसे देखूंगा। हालांकि मैं इस फैसले का सम्मान करता हूं, मगर मुझे लगता है कि देखना होगा अब्देसलाम इस मामले में अपील करना चाहते हैं या नहीं। अगर वो ऐसा चाहेंगे तो जरूरी नहीं कि मैं ही आगे मामला देखूं, कोई और वकील भी ऐसा कर सकता है। ये थे पेरिस में 2015 में हुए हमले के संदिग्ध सलाह अब्देसलाम के वकील के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। डचेस ऑफ कैम्ब्रिज और प्रिंस विलियम्स की पत्नी कैथरीन ने एक लड़के को जन्म दिया है। ये उनकी तीसरी संतान है। केंसिंगटन पैलेस ने बयान जारी किया है कि कैथरीन और शिशु दोनों ठीक हैं। सोमवार सुबह कैथरीन को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और स्वस्थ शिशु के जन्म की खबर 7 घंटे बाद आई। आर्मीनिया के प्रधानमंत्री सर्ज सरगसयान ने कहा है कि वो इस्तीफा देने जा रहे हैं। सरगसयान ने कहा कि वो उन्हें अधिकतम 10 साल के लिए राष्ट्रपति नियुक्त किए जाने के विरोध कर रहे लोगों की मांगें मान रहे हैं। सत्ता में बने रहने के लिए उठाए गए इस कदम के बाद लगातार 11 दिन तक प्रदर्शन चले थे और इसके बाद उन्होंने ये घोषणा की है। एक बयान में उन्होंने कहा कि मैं गलत था और प्रदर्शन कर रहे नेता निकोल पाशियान सही थे। अपनी गर्लफ्रेंड को चिढ़ाने के लिए उसके कुत्ते को नाजी सल्यूट दिखाने वाले ब्रितानी युवक पर $1,100 का जुर्माना लगाया गया है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल का। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा को पद से हटाने के लिए कांग्रेस और अन्य दलों की ओर से दिए गए नोटिस पर कानूनविदों से विस्तृत विचार विमर्श के बाद आज उसे नामंजूर कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा अध्यक्ष द्वारा महाभियोग के प्रस्ताव को नामंजूर करने को गैर कानूनी बताया है और कहा है कि वो इसे चुनौती देगी। ये महाभियोग प्रस्ताव 7 दलों के जरिए लाया गया था। हाल के दिनों में सुप्रीम कोर्ट खासतौर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश के कामकाज को लेकर कई तरह के सवाल खड़े होते रहे हैं। पूरा ब्यौरा दे रहे हैं फैसल मोहम्मद अली।
महाभियोग प्रस्ताव के खारिज होने पर कपिल सिब्बल की बुलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस का वक्त संविधान बचाओ अभियान के चलते टालना पड़ा। राहुल गांधी का संविधान बचाओ अभियान आज ही लॉन्च हुआ है। घंटे भर की देरी से शुरू ही मीडिया से बातचीत में कांग्रेस के पूर्व मंत्री कपिल सिब्बल ने यह साबित करने की कोशिश की कि राज्यसभा अध्यक्ष वेंकैया नायडू का महाभियोग प्रस्ताव को खारिज करने का फैसला गलत था।
अपने आप में ये फैसला गैर कानूनी है, गलत है, इलीगल है और मैं समझता हूं कि ऐसा फैसला चेयरमैन साहब को नहीं लेना चाहिए थे और जिन्होंने भी उनको सलाह दी ऐसा फैसला लेने की वो अपने आप में असंवैधानिक थी, गलत थी। और जो जल्दबाजी चेयरमैन साहब ने दिखाई है उस पर भी हम चिंतित हैं।
मशहूर वकील सिब्बल का कहना था कि प्रस्ताव खारिज किए जाने का फैसला 1968 के उस कानून का उल्लंघन है जिसके मुताबिक महाभियोग प्रस्ताव लाए जाने के पहले चरण में राज्यसभा अध्यक्ष को किसी जज की तरह काम नहीं करना होता है, बल्कि ये देखना होता है कि जो कागजात प्रस्तुत किए गए हैं वो दुरुस्त हैं या नहीं, उसमें दस्तखत सही हैं या नहीं, या वो कहीं बिल्कुल बचकाना वगैरह तो नहीं। और अगर प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है तो फिर उसके बाद अगले चरण की प्रक्रिया शुरू होती है जिसके तहत सबूत वगैरह जुटाने का काम होता है। लेकिन यहाँ तो इस मामले में जांच के पहले से ही सबूत मांगे जा रहे हैं।
So proved misbehavior comes after...
इसीलिए गलत आचरण के सबूत का मामला जांच शुरू होने के बाद आता है, ये जांच के पहले नहीं आ सकती। इसलिए गैर कानूनी है क्योंकि राज्यसभा अध्यक्ष ने कहा है कि हम जज के गलत आचरण का सबूत नहीं पेश कर पाए हैं। ये थे कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल के शब्द। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक राज्यसभा अध्यक्ष वेंकैया नायडू ने कानून के जानकारों से सलाह मशविरे के बाद मामले में पुख्ता सबूत न होने की वजह से इस महाभियोग प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। 7 दलों के 64 सांसदों के हस्ताक्षर के साथ लाए गए महाभियोग प्रस्ताव में मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा पर कामकाज को खास जजों के हवाले करने और जमीन घोटाले जैसे मामलों का आरोप था। भारतीय जनता पार्टी नेता मीनाक्षी लेखी ने कहा,
ये केवल अभियोग नहीं है, ये महाअभियोग की आप बात कर रहे हैं और महाअभियोग का मतलब है कि जो नॉर्मल एलिगेशन है उससे अधिक इसके बारे में विषय के ऊपर आपके पास तथ्य होने चाहिए। तो जहां तथ्य नहीं है, जहां कागजात नहीं है और केवल एक नियत से, और वो नियत है कहीं ना कहीं सरकार को और सरकार के माध्यम से जुडिशरी के ऊपर प्रेशर बनाने की, और आप जुडिशरी को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं ताकि आपके चुनिंदा नुमाइंदों के आगे केसेस लगे।
बीजेपी पूरे मामले को ऐसे प्रस्तुत करने की कोशिश कर रही है जैसे कि महाभियोग प्रस्ताव जस्टिस लोया पर आए फैसले का नतीजा है। जस्टिस लोया सोहराबुद्दीन शेख फर्जी इनकाउंटर मामले की सुनवाई कर रहे थे जिसमें बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का नाम भी शामिल है, लेकिन जस्टिस लोया की मौत में जांच की मांग को दीपक मिश्रा की खंडपीठ ने 19 अप्रैल को खारिज किया था और महाभियोग का प्रस्ताव 20 अप्रैल को ही दाखिल कर दिया गया था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने भी मीडिया के सामने भारत के मुख्य न्यायाधीश पर कई तरह के सवालात उठाए थे, मगर महाभियोग प्रस्ताव पर कांग्रेस के कुछ सीनियर नेता भी उसके साथ खड़े नहीं दिख रहे। अब कांग्रेस ने कहा है कि नायडू के फैसले के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी। फैसल मोहम्मद अली, बीबीसी दिल्ली।
उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ जहां महाभियोग नोटिस खारिज किया तो कांग्रेस पर भी कई सवाल उठ खड़े हुए। क्या कांग्रेस ने जल्दबाजी में नोटिस देकर अपनी ही किरकिरी करा ली? सुनिए रजनीश कुमार की रिपोर्ट।
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग का नोटिस खारिज होने के बाद कांग्रेस पर भी कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सोमवार को उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने महाभियोग के समर्थन में ठोस आधार नहीं होने को वजह बताते हुए अस्वीकार कर दिया था। कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने जल्दबाजी में यह कदम उठाया क्योंकि उसने पूरी तैयारी नहीं की थी। महाभियोग के नोटिस पर 71 सांसदों के हस्ताक्षर थे, जिनमें 7 ऐसे सांसद भी शामिल थे जो रिटायर हो चुके हैं। कहा जा रहा है कि सांसदों से पहले ही हस्ताक्षर करा लिया गया था और ये सांसद बाद में रिटायर हुए। उपराष्ट्रपति को महाभियोग का नोटिस देते वक्त उन सांसदों के नाम को क्यों नहीं निकाला गया? वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा कहते हैं,
रिटायर तो अभी हुए हैं ना, ये तो मोशन पहले से उन्होंने साइन करवा के रखे हुए हैं। इसमें मैं समझता हूँ कि मीडिया को कोई किसी का पक्ष या किसी के विरोध में बात नहीं करनी चाहिए। जो बात तथ्य सामने है वो सच रखते हैं। अब कांग्रेस का ये कहना है कि अब हम सुप्रीम कोर्ट में जाके याचिका दायर करेंगे। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर होती है उसके लिए जो बेंच है वो क्या मुख्य न्यायाधीश बनाएंगे। अगर वो बनाएंगे तो फिर उस पर सवाल उठेंगे।
इसके साथ ही जिन सांसदों ने महाभियोग के समर्थन में अपना हस्ताक्षर किया था उनमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पी चिदम्बरम और सलमान खुर्शीद के नाम शामिल नहीं थे। क्या पार्टी में महाभियोग को लेकर राय बंटी हुई थी? वरिष्ठ पत्रकार राशिद किदवई कहते हैं,
देखिए दरअसल सबसे बड़ी बात राहुल गांधी की जो तजुर्बे की कमी है वो उनमें इतना अनुभव नहीं है और वो जो सीनियर कांग्रेस के लीडर हैं उनको भरोसे में लिए बिना कुछ फैसले कर रहे हैं, जिससे दोनों जो ये टेक्निकल बातें आ रही हैं और पॉलिटिकल बातें दोनों चीजों में जो है एक तरीके से कांग्रेस का माहौल उड़ाया जा रहा है। दरअसल देखिए एक बड़ा फैसला था कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए महायोग अभियोग लाया जाए कि नहीं, और इसमें कांग्रेस को अपने जो घर के लोग थे जो वकील हैं या जो बड़े बड़े राजनेता हैं जो कांग्रेस के बड़े दिग्गज हैं उनसे बातचीत करके राहुल गांधी को फैसला लेना चाहिए था, उन्होंने नहीं लिया। कहा जाता है कि सीताराम येचुरी और प्रशांत भूषण और दूसरे लोगों का एक तरीके से दबाव था।
जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग के समर्थन में कांग्रेस समेत 7 दल शामिल थे। आलोचकों का कहना है कि इसका नेतृत्व कांग्रेस कर रही थी और इसीलिए उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। एक सवाल नोटिस देने के समय पर भी उठ रहा है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस जज लोया पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही थी और जैसे ही फैसला कांग्रेस के पक्ष में नहीं आया उसने महाभियोग का नोटिस दे दिया। बीजेपी प्रवक्ता अमन सिन्हा कहते हैं,
तो आपको लग रहा है कि जस्टिस लोया पे जो फैसले आने थे उसका वो इंतजार कर रहे थे?
उनके एक्शन से तो यही स्पष्ट होता है क्योंकि अगर उनको नोटिस सबमिट करना होता तो पहले कर देते।
हालांकि वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा का मानना है कि जस्टिस दीपक मिश्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के ही 4 जजों ने गंभीर संदेह व्यक्त किए हैं, ऐसे में विपक्ष के पास विरोध करने का कोई और विकल्प नहीं था। रजनीश कुमार, BBC, दिल्ली।
कांग्रेस पार्टी ने आज अपने संविधान बचाओ अभियान की शुरुआत दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम से की, जहां सैकड़ों की तादाद में पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। राहुल भारतीय जनता पार्टी के स्लोगन बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की पैरोडी करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि नौबत ऐसी आ गई है जब बेटियों को भाजपा के नेताओं से बचाना जरूरी हो गया है। इसके अलावा दलितों पर हो रहे हमलों पर भी राहुल ने भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लिया। सलमान रावी की रिपोर्ट।
संविधान बचाओ अभियान की शुरुआत करते हुए कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी ने बिना मिनट गंवाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधना शुरू कर दिया और उन्नाव और कठुआ की घटनाओं पर सरकार की चुप्पी को चुनौती दी। इसके अलावा दलितों पर हो रहे हमलों की भी चर्चा करते हुए उन्होंने कहा,
अत्याचार बढ़ता जा रहा है, उना उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश महाराष्ट्र जहां भी आप देखो दलितों के खिलाफ अत्याचार बढ़ता जा रहा है, कुचले जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, हिंसा होती है। वो व्यक्ति जो टॉयलेट साफ करने में स्पिरिचुअलिटी देखता है उस व्यक्ति के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है।
राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि ज्यादातर संवैधानिक पदों पर RSS से जुड़े लोगों को रखा जा रहा है।
लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो, IIT हो, IIM हो, जो भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, सब इंस्टीट्यूशंस को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन के बिना इस देश में ना IIT बनती, ना IIM बनता, ना IT बेंगलोर बनता, ना राज्यसभा, ना लोकसभा, कुछ नहीं होता। अगर इस देश में इंस्टीट्यूशंस पैदा हुए हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट्स हैं, तो नीव कॉन्स्टिट्यूशन है। और आज हमारे सब सब के सब इंस्टीट्यूशंस में एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक आरएसएस के विचारधारा के लोगों को डाला जा रहा है, इस विचारधारा वाले लोगों को।
राहुल गांधी ने तालकटोरा स्टेडियम में संविधान बचाओ अभियान की शुरुआत तो की, मगर उन्होंने प्रधानमंत्री को भी चुनौती दे डाली कि संसद में मोदी उनका भाषण सिर्फ 15 मिनटों तक सुन लें।
सुप्रीम कोर्ट को कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है, पार्लियामेंट हाउस को बंद कर रखा है। नीरव मोदी जी का मामला है, ललित मोदी जी का मामला है, विजय माल्या जी का मामला है, राफेल का मामला है। नरेंद्र मोदी जी पार्लियामेंट में खड़े होने से घबराते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, 15 मिनट मेरी वहां पे स्पीच करा दो, 15 मिनट मेरी वहां पे मोदी जी के सामने स्पीच करा दो, 15 मिनट में राफेल की बात करूंगा, नीरव मोदी की बात करूंगा, मोदी जी वहां पे खड़े नहीं रह पाएंगे। पूरा देश इस बात को समझता है, पूरा देश इस बात को समझता है कि राफेल मामले में चोरी हुई है। नीरव मोदी 30,000 करोड़ रुपए लेके भाग जाता है और उनके मित्र एक शब्द नहीं कहते हैं।
जब मैंने यूपीए की सरकार के दौरान मनरेगा में धांधली की तरफ इशारा किया तो अंग्रेजी में जवाब देते हुए उन्होंने कहा,
Are being eroded and weakened.
What about मनरेगा? मनरेगा and RTI?
See, now the press person has asked me a question. I'll answer it. मनरेगा was also a foundation of equal rights and that has also been weakened by the Prime Minister. Now you do me a favor. When Mr. Narendra Modi is speaking, you go and ask him a question. They will pick you up and throw you out of the room. That's the difference between us and them. That is what we have been doing for 70 years. You ask us questions, you attack us.
Rahul Gandhi ka kehna tha ki patrakar sawal kar rahe hain aur main jawab dunga iska. Unhone chunauti bhi de dali कि सभा के दौरान प्रधानमंत्री से इस तरह के सवाल पूछने की हिम्मत दिखाएं तो सभा से उठाकर बाहर फेंक दिया जाएगा। राहुल गांधी के भाषण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए संगठन के प्रवक्ता संबित पात्रा का कहना था,
पुनः एक बार हमने इसी सच्चाई को फलीभूत होते हुए देखा है। ये जो फ्रस्ट्रेशन है, ये जो एंगर है, ये जो गुस्सा राहुल गांधी का था, ये इसलिए था क्योंकि कहीं ना कहीं आज परिवारवाद मात खा रहा है और कहीं ना कहीं साधारण जनता आज सत्ता तक पहुंच रही है। सबसे ज्यादा दलित एमएलए और एमपी का होना, एक साधारण चाय वाले का प्रधानमंत्री के पद तक संघर्ष के माध्यम से पहुंच जाना, यह परिवार पचा नहीं पा रहे।
कांग्रेस का संविधान बचाओ अभियान पूरे साल भर तक चलेगा और अगले साल 14 अप्रैल यानी अंबेडकर जयंती के दिन इसका समापन होगा। सलमान रावी, BBC दिल्ली।
ये BBC है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फदल के साथ। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में कल हुई एक मुठभेड़ में 14 माओवादी मारे गए थे। इसे सेना के लिहाज से एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। विशेषकर महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में लंबे वक्त बाद सेना को इतनी बड़ी सफलता मिलने की बात कही जा रही है। क्या नक्सली संगठन अब अपने इलाकों में कमजोर पड़ने लगे हैं और क्या ये सरकार इस साल 2019 तक देश में नक्सलियों का सफाया कर सकती है, यही जानने की कोशिश की हमारे साथी नवीन नेगी ने माओवादी विषयों के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार रुचिर गर्ग से।
देखिए, उसके काम के तौर तरीकों में कोई बहुत फर्क दिखता हो ऐसा नहीं है। गणपति अभी भी जनरल सेक्रेटरी हैं, इस तरह की खबरें हैं और ये वायलेंस के उसी रास्ते पर हैं। इनके तौर तरीके वही हैं जो पहले हुआ करते थे और जिस तरह से ये मिलिट्री एक्शंस करते थे, इनका अपना एक पूरा ढांचा है, उस ढांचे के तहत जिस तरह की कार्रवाइयां करते थे अभी भी उसी तरह की कार्रवाइयां इनकी हो रही है। अभी सुरक्षा बलों का जिस तरह से दबाव बढ़ा है उसका असर देखने को मिलता है। आज की भी जो घटना है वो एक तरह से सुरक्षा बलों के लिए बड़ी उत्साहवर्धक है क्योंकि ये कई वर्षों में ऐसा हुआ है। खासतौर पर महाराष्ट्र में जो C-60 फोर्स है वो एक्सपर्ट है माओवादी ऑपरेशन के लिए, तो उसके लिए ये एक बड़ी सफलता थी।
जो गृह मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने कहा है कि 2019 तक नक्सलियों का सफाया कर देंगे, उन्होंने ये बड़ी बात कही है, इस बयान में कितना दम नजर आता है?
देखिए, ये अभी केंद्र सरकार के पास, NDA सरकार के पास उत्साहित होने का कारण है कि अभी उन्होंने पिछले दिनों एक बैठक में जब इसको रिव्यू किया कि कितने जिले नक्सल प्रभावित अभी बचे हैं, तो उसमें से 44 जिलों में उन्होंने कमी की है, तो अभी इनके पास उत्साहित होने का कारण है। ये जो घटना आज जो नक्सल एनकाउंटर हुआ, इस तरह की घटनाएं जो है वो सरकार का उत्साह बढ़ाती है, ये बात बिल्कुल सच है। और एनडीए के रिजीम में जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस का दबाव बढ़ा है और सिक्योरिटी फोर्सेस की जिस तरह से तैनाती हुई है, तो ये कहा जा सकता है कि उस दबाव के चलते जो है वो इनको सफलताएं भी मिली हैं। लेकिन 2019 तक इसका पूरा सफाया कर देना, इस तरह का ऐलान करना या इस तरह का दावा करना, ये थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ये जल्दबाजी है।
मौजूदा जो सरकार है इसके कार्यकाल के दौरान नक्सली जो है वो कमजोर हुए हैं, ये मानकर हम चलें?
हाँ, ये बात निश्चित है कि नक्सलियों की ताकत घटी है, नक्सलियों को बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। सुरक्षा बलों की तैनाती जो है वो बड़ी तादाद में पूरे नक्सल प्रभावित इलाके में हुई है पिछले कुछ समय से, सुरक्षा बलों को सफलताएं भी बड़ी मिली है, लेकिन फैसला सुना देने जैसी स्थिति जो है वो अभी भी नहीं।
जैसा गृह मंत्री कह रहे हैं कि नक्सलियों का सफाया इस तय वक्त तक कर देंगे, मान लीजिए अगर ऐसा हो जाता है, बस्तर जैसे इलाकों में नक्सली पूरी तरह से साफ हो जाते हैं, तब जो नियम कानून हैं, जो प्राकृतिक संसाधन हैं, उनके हिसाब में जो है किस तरह का बदलाव सरकार के नज़रिए से आएगा? वहाँ के जो आम नागरिक हैं जो उन इलाकों में रहते हैं, जिनकी एक विडंबना होती है कि वो सरकार की तरफ से पीसे जाते हैं, वो नक्सलियों की तरफ से पीसे जाते हैं, उनमें किस तरीके का एक बदलाव आप देखते हैं?
सरकार जिस तरह से उत्साहित है, उसे लगता है कि सरकार, अगर मैं छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात करूं या इधर उड़ीसा या इधर महाराष्ट्र के इलाके की अगर बात करें, तो सड़कों का जिस तरह से जाल बिछाया जा रहा है, तो ये कहा जाता है कि भाई सड़कों का जाल जो है आदिवासी की पहली जरूरत सड़क है या पीने का साफ पानी है या इलाज है, तो ये उम्मीद की जानी चाहिए सरकार जिस तरह दावा करती है। अगर हम एक काल्पनिक स्थिति की बात करें कि अगर नक्सली नहीं है,
हाँ,
तो बस्तर का आदिवासी ये अपेक्षा करेगा, झारखंड का आदिवासी ये अपेक्षा करेगा, महाराष्ट्र या तेलंगाना का या उड़ीसा का आदिवासी ये उम्मीद करेगा कि वहाँ पे इलाज की समुचित व्यवस्था हो, पीने का साफ पानी मिले, शिक्षा के अच्छे इंतजाम वहाँ पर हों, ये उम्मीद वो करेगा और तब ये असली चुनौती होगी।
ये थे वरिष्ठ पत्रकार रुचिर कर्क। आज सोमवार है और आज के दिन आपको इंतजार रहता है अपने पत्रों का।
आपकी राय। नमस्कार, स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का
और इंदु पांडे का भी नमस्कार।
इंदु जी, बहुत सारी ईमेल्स आपके पास हैं, चिट्ठियां हैं, कहां से शुरुआत कर रही हैं?
शुरुआत करते हैं लोकेंद्र शेखावत से। कहते हैं कि जब पता चला कि रेहान साहब विवेचना नहीं कर रहे, तो लगा कि विवेचना क्या सुनना, परंतु पिछली दोनों विवेचना अद्भुत और आकर्षक रही। रेहान साहब के लिए वापसी करना मुश्किल होगा।
देखिए, ऐसी ही एक ईमेल मेरे हाथ में भी है। आसिफ करीम फौलाद तारा शम्स अरकान ईरान से लिखते हैं, विवेचना वो भी गणित पे, कमाल की प्रस्तुति राजेश प्रियदर्शी को, बहुत बहुत बधाई। इतने सरल शब्दों में इस जटिल विषय को बयान करना कितना मुश्किल होता है।
और एक मेल इन्हीं के लिए आया है, गौतम दत्ता का, किशनगंज बिहार से, और गोपाल सिंह चौहान गांव कानीवाड़ा जिला जालौर राजस्थान से। कहते हैं कि बीबीसी की पूरी टीम को नमस्कार, और रेहान जी द्वारा प्रस्तुत विवेचना का तो हमेशा से ये कायल रहे हैं, लेकिन फिर से वही राजेश प्रियदर्शी की बहुत तारीफ करते हैं।
और देखिए, अब इससे पहले आगे बढ़े, दिल्ली से एक ईमेल आया है अमित रंजन पांडव नगर से, इन्होंने लिखा है, लिखते हैं, रेहान फजल जी की विवेचना की प्रस्तुति निश्चय ही अनूठी होती है, हम सब दीवाने हैं, लेकिन पिछली दो विवेचनाओं में उनकी गैर मौजूदगी में राजेश जोशी और राजेश प्रियदर्शी जी ने महफिल लूट ली। भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मुझे भी आपने शुक्रिया कहा इस विवेचना के लिए और राजेश प्रियदर्शी को भी, तो दरअसल तो शुक्रिया आपका।
और अबू सईद का मेल है, लिखते हैं कि बीबीसी कार्यक्रम में शामिल होने वाले खत अक्सर उत्तर भारत के होते हैं, और आपको ये जानकर खुशी होगी कि तमिलनाडु में भी आपका कार्यक्रम मैं 20 साल से सुन रहा हूँ।
क्या बात है, ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि कश्मीर से हमारे पास चिट्ठियाँ आती हैं, तमिलनाडु से आती हैं, असम से और कच्छ गुजरात से भी आती हैं, विदेशों से तो आती हैं।
और इनका एक छोटा सा सवाल है कि क्या मैं बीबीसी हिंदी को उर्दू में खत लिख सकता हूँ?
देखिए, इतनी सुंदर हिंदी इन्होंने लिखी है, टाइपिंग करके लिखी है, तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि क्यों उर्दू में लिखना चाहते हैं, लेकिन अगर आप उर्दू में लिखेंगे तो हमको किसी से पढ़वाना पड़ेगा, लेकिन आपकी चिट्ठी, आपकी जो बात है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, किस भाषा में आप लिख रहे हैं शायद वो कम महत्वपूर्ण है।
और राजेश प्रियदर्शी के लिए ही मेल आया है शमसुल हक किशनगंज पोस्टेड एट कोलकाता से, और धर्मेंद्र मौर्य ने भी अपना पहला ईमेल भेजा है इन्हीं की तारीफ में।
इसी तरह की तारीफ कुलदीप मोहन त्रिवेदी जरगांव उन्नाव उत्तर प्रदेश से भी की है, जिन्होंने लिखा है कि रेहान साहब की अनुपस्थिति में राजेश द्वारा प्रस्तुत विवेचना बहुत अच्छी लगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
और अमित कुमार सिंह चंदौली उत्तर प्रदेश से हैं और योगेंद्र कुमार ग्राम केसर जिला बक्सर बिहार से। आज तो लगता है कि पूरा प्रोग्राम राजेश
प्रियदर्शी मय हो गया है प्रोग्राम, लेकिन उन्होंने वाकई बहुत ही गंभीर तरीके से एक गंभीर विषय को उठाया था।
और मनदीप निकू गांव सहीना जिला बरनाला पंजाब से लिखते हैं कि आपके सभी कार्यक्रमों की पेशकारी बहुत ही अच्छे ढंग से होती है, गोल्ड कोस्ट खेलों का जो आप हर रोज हाल बताते थे हमें बहुत बढ़िया लगा।
देखिए टिक्कू साहब का एक शब्द जो इन्होंने इस्तेमाल किया उससे मैं इनका मुरीद हो गया, और पेशकारी जो इन्होंने कहा तो बहुत खूब, क्या इस्तेमाल आपने किया है। आप लगातार चिट्ठी भेजते रहें, ईमेल भेजते रहें और हमारे कार्यक्रम सुनते रहें।
और दौलत गौर ने लिखा है कि 19 अप्रैल 2018 का प्रोग्राम सुनकर लगा कि इनको पत्र लिखना चाहिए, बीबीसी में शामिल हो या ना हो।
हुआ, बिल्कुल हुआ दौलत गौर साहब, क्यों नहीं होगा, लेकिन आप जरूर ये लिखा कीजिए कि आप कहाँ रहते हैं, किस जिले में हैं, या कोई गांव शहर अपना अता पता भी बताया करें तो अच्छा रहेगा।
लेकिन इन्होंने वही लिखा है कि राजेश जोशी जी बधाई के पात्र तो हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा आभार प्रस्तुत करना चाहते हैं, रेहान साहब की कमी बिल्कुल भी उन्होंने महसूस नहीं होने दी।
तो अब हमारे पास समय इतना ही है, मैं चलते चलते श्रोताओं को पता बता देता हूँ।
ज़रूर।
बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3035, नई दिल्ली 110003, और ईमेल लिखना चाहें तो लिखिएगा hindi.letters@bbc.co.uk पर।
नमस्कार, नमस्कार।
और अब नजर दौड़ाते हैं आज की खेल गतिविधियों पर।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं इंदु पांडे। बात करते हैं आईपीएल की, जिसमें अब से कुछ ही देर में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला ग्राउंड में दिल्ली डेयर डेविल्स और किंग्स इलेवन पंजाब का आमना सामना होगा। और अगर हम बात करें दिल्ली डेयर डेविल्स की तो वो आईपीएल की इकलौती टीम है जिसने आज तक फाइनल का मुंह नहीं देखा। जिस टीम का थीम सॉन्ग था खेलो फ्रंट फुट पे, वो आईपीएल के इतिहास में ज्यादातर मौकों पे बैक फुट पर ही नजर आई। पहले दोनों सीजन में दिल्ली की टीम ने सेमीफाइनल तक का सफर तय किया था, लेकिन उसके बाद से टीम का ग्राफ लगातार नीचे गिरता चला गया। आईपीएल के सीजन में दिल्ली की कप्तानी गौतम गंभीर को मिली है और टीम में गौतम गंभीर की वापसी से फैंस की उम्मीदें बढ़ गई हैं। फिर भी अभी तक खेले गए 4 मैचों में से 3 मैच में उन्हें हार का सामना करना पड़ा और आज गौतम गंभीर के सामने एक बड़ी चुनौती होगी। क्रिकेट एक्सपर्ट विजय धैया,
सबसे बड़ा चैलेंज तो उनके लिए खुद अपने रन बनाना होगा। मुझे लगता है कि कप्तानी बात में आती है, आप जिस तौर पे खेल रहे होते हैं वो आपके लिए बहुत अहम हो जाता है। अगर उनका बल्ला बोलेगा तो उनका खुद का विश्वास बढ़ेगा और जब आपका विश्वास बढ़ता है तो फिर आप कई इस तरीके के निर्णय लेने में कामयाब रहते हैं जो बहुत जरूरी होते हैं कप्तान एक नायक के रूप में भी। तो उनका बल्ला खामोश होने की वजह से उस तरीके की शुरुआत उनको मिल नहीं पा रही है। मिडिल ऑर्डर के अंदर पंत बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं क्योंकि गौतम गंभीर इस तरीके के प्लेयर हैं कि वो निरंतरता के साथ रन बनाते हैं। जेसन रॉय, मुनरो, ये इस तरीके के खिलाड़ी हैं कि ये जब रन बनाएंगे बहुत ताबड़तोड़ तरीके से बनाएंगे लेकिन उतनी निरंतरता से नहीं बनाते हैं, और यही मैक्सवेल के साथ भी है। तो गौतम गंभीर के बल्ले का बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है।
तो अब से थोड़ी ही देर में मैच शुरू हो जाएगा। किंग्स इलेवन पंजाब की टीम जिसके लिए क्रिस गेल धुआंधार पारियां खेल रहे हैं, लेकिन टीम सिर्फ उनके भरोसे है नहीं, केएल राहुल, करुण नायर जैसे भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी छाप छोड़ी है। तो आज के मैच पर एक नजर क्रिकेट एक्सपर्ट विजय धैया से।
देखिए दिल्ली डेयरडेविल की जो टीम है वो बहुत ज्यादा प्रेशर में होगी और जिस तरीके की क्रिकेट किंग्स इलेवन खेल रही है मुझे लगता है कि वो प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाएगा उनके ऊपर। हाँ, ये अलग बात है कि पहला मैच है दिल्ली डेयरडेविल के लिए अपने होम ग्राउंड पर मुझे लगता है कि काफी ज्यादा प्रेशर में वो नजर आएंगे,
इसलिए आज जरूरी है दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम के लिए एक अच्छी शुरुआत जो उन्हें हो सकता है कि एक विश्वास दे। खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही।
और सभा के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ विपक्ष के महाभियोग नोटिस को उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने खारिज कर दिया है। ईरान ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख ताकतों के साथ हुए उसके परमाणु समझौते में बदलाव किए जाने की कोई संभावना नहीं है। 2015 में पेरिस में हुए इस्लामिक हमलों में एकमात्र जिंदा बचे संदिग्ध सलाह अब्दे सलाम को बेल्जियम में 2 साल पहले हुए शूटआउट के दौरान हत्या की कोशिश का दोषी पाया गया है। बीबीसी समाचार।
दिन भर को यहीं विराम देते हैं। स्टूडियो संभाल रहे थे कपिल देव सिंह, रेहान फजल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।